ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की लंबित रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने संसद परिसर में दिल्ली की कथित बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पुराना किला में 3 दिवसीय आसियान भारत संगीत महोत्सव 2024 शुरू हो गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की लंबित रिपोर्ट विधानसभा के मौजूदा सत्र में रखने के लिए एक पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ये रिपोर्ट कई सालों से लंबित है और इस संबंध में लगातार उनकी तरफ से मुख्यमंत्री से अनुरोध किए जाते रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में आज शीतकालीन सत्र के लगातार चौथे दिन भी व्यवधान जारी रहा। एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने आज संजय सिंह के नेतृत्व में संसद परिसर में दिल्ली की कथित बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली अपराध की राजधानी बन चुकी है। इस दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर जवाब देने की मांग की।
देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके घर के आसपास के कई किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है।
दूसरी ओर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चिंतित है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि दिल्ली में अपराधियों को आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बचा रही है।
आम आदमी पार्टी अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है, हम भी चिंतित हैं। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है जब सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कहां कहां अपराधियों को बचा रही है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में 3 साल या 4 साल की डिग्री हासिल कर सकेंगे। दिल्ली के पुराना किला में आज से 3 दिवसीय आसियान भारत संगीत महोत्सव 2024 शुरू हो गया है। इस महोत्सव का आयोजन विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूर्ण होने पर कर रहा है। एक रिपोर्ट।
इस महोत्सव में 10 आसियान सदस्य देश ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बैंड के साथ साथ भारत के 5 प्रमुख बैंड भी अपने संगीत की प्रस्तुति देंगे। भारत से सुप्रसिद्ध गायक शान, जसलीन रॉयल, सुकृति और प्रकृति कक्कड़, भारत का वेस्टर्न घाट बैंड, मलेशिया का बैंड फ्लोर 88 और सिंगापुर का सबसोनिक आईबी गायन के जरिए लोगों का मनोरंजन करेंगे। यह महोत्सव 1 दिसंबर तक चलेगा। संगीत महोत्सव में आम जन के लिए प्रवेश निःशुल्क है और वे शाम 6:30 से इस महोत्सव में प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान के साथ भानु प्रताप सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में चित्रों का संग्रह है जो असार और शून्यता के विचारों पर केंद्रित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदर्शनी के लिए शून्यता नाम बोध दर्शन को दर्शाने के लिए लिया गया है। प्रदर्शनी में प्रत्येक कैनवास पर देवी देवताओं, नश्वर और अमर की अनुमानित छवियां प्रदर्शित की गई हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए चित्रकार अभय के ने बताया कि उन्होंने 60 चित्रों की एक श्रृंखला को कैनवास पर उकेरा है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीरें वास्तविकता की प्रकृति को व्यक्त करती हैं जो शून्यता है।
प्रदर्शनी 8 दिसंबर तक खुली रहेगी 10 बजे से 6 बजे तक।
प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में अगले महीने की 6 तारीख को 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और कारीगरी संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये आयोजन पूर्वोत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर को दूर करेगा। हमारे संवाददाता अमन यादव ने बताया कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव दुनिया के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन, संस्कृति और विरासत को देखने का एक अवसर होगा।
अष्टलक्ष्मी महोत्सव का नाम देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों के नाम पर रखा गया है, जो समृद्धि, धन, ज्ञान, धर्म, कृषि और अन्य विशेषताओं का प्रतीक है। इस महोत्सव का शुभंकर पूर्वी है, जो पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक युवा लड़की है, तथा उसकी पोशाक पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, परिदृश्य और समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण ग्रामीण हाट बाजार होगा, जिसमें क्षेत्र के 320 किसानों और कारीगरों की उपज और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में पवेलियन, उत्तर पूर्व पर्यटन गैलरी और मुगा तथा एरी सिल्क गैलरी के साथ एक समर्पित पवेलियन होगा। उद्घाटन के दौरान एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम के दौरान पैनल चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि महोत्सव न केवल क्षेत्र को सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसके आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम भी करेगा, जिससे कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा क्षेत्र की परंपरा हो, क्षेत्र का हस्तशिल्प हो, कारीगरी हो, संस्कृति हो, इन सभी विरासतों का समन्वय, संगम और प्रदर्शन इस 3 दिवसीय महोत्सव के द्वारा किया जाएगा।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आज दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 को संबोधित किया। इस व्याख्यान का विषय वैश्विक क्षेत्र पर भारत की बढ़ती भूमिका था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलते हुए भारत आज दुनिया भर में एक वैश्विक नेता के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कुछ बात कही।
90 साल से अधिक समय से आकाशवाणी ने हमेशा संतुलन और विश्वसनीयता का ध्यान रखा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी हर वर्ष 2 महत्वपूर्ण व्याख्यानों का आयोजन करती है, सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान। भारत की इस बढ़ती भूमिका में आकाशवाणी का भी अपना एक योगदान है।
इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी उपस्थित थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन आकाशवाणी द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किया जाता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 334 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के बवाना में 415, अलीपुर में 351, विवेक विहार में 368 और नजफगढ़ में 326 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हम इसे दोबारा बता दें कि आज का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा में आज पहले दिन कार्रवाई शुरू होते ही उद्योगपति रतन टाटा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद भाजपा के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों को सूचीबद्ध सदस्यों द्वारा पढ़ा हुआ मान लिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। उन्होंने इस बात पर भी विरोध जताया कि 3 दिवसीय सत्र में प्रश्नकाल की व्यवस्था नहीं की गई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि विधानसभा द्वारा भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, इसलिए प्रश्नकाल नहीं रखा गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया कि ये तर्क सही नहीं है। अध्यक्ष ने विशेष उल्लेख के मुद्दों को सभी विधायकों का नाम लेकर कहा कि ये मामले पढ़े हुए माने जाएं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बस मार्शलों की बहाली को लेकर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी और इसे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने शुरू करते हुए कहा कि बस मार्शलों की बहाली होनी चाहिए। उन्होंने मार्शलों की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि ये बहुत परेशान हैं और इनकी नौकरी को पक्का कर इन्हें बहाल किया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी बस मार्शलों को बहाल करने की मांग रखी। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता और भाजपा विधायक अभय वर्मा ने भी मार्शलों को बहाल करने की मांग का समर्थन किया। हालांकि भाजपा विधायक ने आम आदमी पार्टी पर बस मार्शल के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आप विधायक प्रीति तोमर ने भी मार्शलों की नौकरी बहाली की मांग रखी, तो वहीं आप विधायक सोमनाथ भारती, राखी बिडलान ने भी मार्शलों की बहाली की मांग का समर्थन किया। भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में 10,792 बस मार्शल हटाने की बात कही थी। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस मार्शलों को नौकरी पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा था और उनके कहने पर भी उन्हें हटाया गया। हालांकि इस दौरान आप विधायकों ने गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने बोलते हुए कहा कि जब वो और मुख्यमंत्री आतिशी राजनिवास में उपराज्यपाल से मिलने गए तो वहां इस विषय पर एक समिति बनाने पर सहमति बनी, लेकिन उपराज्यपाल के पत्र भेजने के बाद भी भर्ती की कोई प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकार के पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली सरकार भी चाहती है कि बस मार्शलों की बहाली की जाए और इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री आतिशी ने चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल द्वारा मंजूर कर मार्शलों की बहाली की जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त ने दिल्ली पुलिस में कर्मियों की कमी व कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इस चर्चा को शुरू करते हुए कहा कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतरीन होनी चाहिए। इस विषय पर कई विधायकों ने चर्चा की। भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी ने बताया कि भाजपा सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं पर नकेल कसी है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद किया गया है, कानून व्यवस्था को भी सख्त किया गया है। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि G20 का सफल आयोजन भी दिल्ली पुलिस के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि निर्भया फंड का भी मुद्दा उठाया और सरकार पर इस विषय पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के घर में ही महिला सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक अपने स्थान पर खड़े हो गए और अध्यक्ष ने मार्शलों से विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर करवा दिया। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की लंबित रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने संसद परिसर में दिल्ली की कथित बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पुराना किला में 3 दिवसीय आसियान भारत संगीत महोत्सव 2024 शुरू हो गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 को संबोधित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।